ललिता सखी के विषय में कुछ बातें हैं, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये लिखी है, अष्ट सखियों में से सबसे पहला नाम ललिता। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्येन्दुलेखा च रंग देवी सुदेविका। आठ सखियों का ये क्रम है, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी, आठ वरिष्ठ सखियां हैं। उनमें से ललिता देवी सबसे श्रेष्ठ है। तत्राद्य ललिता देवी श्यादष्टा सुवरीयसी प्रिय सख्या भवे ज्येष्ठा सप्तविंशति वासरे। इनका एक नाम अनुराधा भी है, ललिता सखी का एक नाम अनुराधा भी है, विख्यात है, अनुराधा के नाम से विख्यात है। अनु राधा क्यों, राधा की जो अनुगामिनी, राधा रानी की जो अनुगामिनी या राधा रानी के अनुसार हर कार्य करते हैं, राधा को रानी के हमेशा अनुकूल रहती हैं, कृष्ण के प्रतिकूल हो जाती हैं, कृष्ण के विरुद्ध हो जाती हैं, राधा रानी के अनुकूल रहती हैं, अनुराधा इसलिए। और वामा और प्रखरा नायिका हैं ये। वामा, वामा का मतलब है मान कराने में व्यस्त रहती हैं, हमेशा राधा रानी को हमेशा सिखाती हैं कि तुम कृष्ण के साथ मान करो, कृष्ण तुमको सस्ता नहीं समझे, तुम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रहना कि कृष्ण तुमको सस्ता मान लें कि चलो ठीक है ऐसे ही है, नहीं मान करो कृष्ण के साथ मान है? और मान की शिथिलता पर क्रोध करने वाले हैं, अगर राधा रानी का मान शिथिल हो जाए तो गुस्सा होती हैं, गुस्सा होती हैं है? कि मान करो मान करो, राधा रानी शिथिल हो जाती हैं है? और कठोर भाषणी है, कठोर राधा रानी के प्रति भी कठोर व्यवहार करती हैं, लेकिन वो प्रसन्नता के लिए राधा रानी के। और प्रखरा, प्रखरा हैं, प्रखरा का मतलब है प्रगल्भ वचन बोलने वाली, जो बातों ही बातों में अपना दुख और क्रोध प्रकट करती है। तो कृष्ण की जो है वो निंदा भी करती हैं राधा रानी की, अगर कृष्ण कुछ विरुद्ध व्यवहार करते हैं तो कृष्ण की निंदा करती हैं, दुख और क्रोध प्रकट करती हैं, तो ये सब जो है ललिता देवी के गुण हैं। इनका जो रंग है वो गोरोचना के समान है और वस्त्र मयूर पंख जैसे हैं। विशेष अनुराधा तया ख्याता वाम प्रकृताम गताम गोरोचना निभांगी सा सिकी पिछे निभांबरा। इनकी माता का नाम शारदी है और पिता का नाम है विशोक, पति का नाम है भैरव, जो गोवर्धन गोप के सखा हैं गोवर्धन। जाता मातरी सारद्याम पितुरेशा विशोकतः पतिर भैरव नामा स्या सखा गोवर्धनस्य यः। 129 संख्या है इसमें। ललिता सखी जो है परम प्रेष्ठ सखियों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, परम प्रेष्ठ सखियां हैं आठ राधा रानी की, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं ये। और इनकी अध्यक्ष हैं परम अध्यक्षा है। तथापि परम प्रेष्ठ है सख्या श्रेष्ठ तयोदिताम सर्वत्र ललिता देवी परमाध्यक्षताम गताम। श्री ललिता श्री राधा कृष्ण के सभी भावों को पूर्ण रूप से जानती हैं, ये मिलन भी कराती हैं और विग्रह भी कराती हैं, ये दोनों कार्य करती हैं। राधा कृष्ण के बीच में मिलन भी करा देती हैं और जब चाहें तो झगड़ा भी करा देती हैं, इनका इतना नियंत्रण है, राधा कृष्ण के बीच में झगड़ा भी कराती हैं है? लेकिन हर प्रत्येक कार्य में राधा रानी को सुख पहुंचाना, राधा रानी का जो है सम्मान बढ़ाने का ही इरादा रहता है इनका। तो कृष्ण झगड़ा भी कराएंगी राधा रानी का, है ना। ये श्री राधा रानी की पक्षपाती होने के कारण कभी माधव के प्रति अपराध भी कर बैठती हैं, बहुत कठोर व्यवहार करते हैं कभी कभी कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण फिर भी प्रसन्न होते हैं कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। श्रीकृताखिल भावे संधि विग्रहणी मता अपराधति राधाय माधवे क्वापि देवता। तो जब झगड़ा होता है उस समय प्रौढ़िवाद मिलने पूर्ण है, प्रौढ़िवाद का मतलब गर्वपूर्ण वचन, कृष्ण को गर्वपूर्ण वचन सुनाती हैं कि तुम अपने को ज्यादा ऊंचा मत समझो, कृष्ण को जो है राधा रानी से जो है तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो गर्वपूर्ण वचन भी सुनाती हैं और प्रत्युत्तर भी देती हैं, कृष्ण कुछ बात बोलेंगे तो उनका उत्तर भी दे देंगे, उल्टा जवाब भी दे देंगे है? और युक्ति के समय ये कभी तो बहुत क्रोधित भी हो जाती हैं है? जब युक्तियाँ देती हैं, और कभी राधा के भावों में अपने भावों को मिलाने के लिए कुंचित मुखी अर्थात मुख नीचे कर लेती हैं, राधा का भाव को अपने भाव को मिलाने के लिए सिर भी नीचा कर लेती हैं, इसलिए अनुराधा अनुराधा है। और गुरुचन होने पर भी अपनी सखी श्री राधा की तत्व कांचन जैसी द्युति हो जाती है इनकी, इनका रंग भी राधा रानी जैसा रंग हो जाता है, हालांकि इनका रंग गोरोचना के जैसा है, लेकिन राधा के भाव में जब ये जो है मतलब होती हैं राधा रानी के अनुकूल जब होती हैं तो इनका रंग भी राधा रानी जैसा हो जाता है, तप्त कांचन। राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन है, गौरांगी तपे हुए सोने जैसे रंग है, और इनका रंग गोरोचना जैसा है, अंतर है रंग में, लेकिन कभी राधा रानी के अनुकूल भाव में इतनी ज्यादा ये हो जाती हैं कि इनका भी रंग राधा रानी जैसा तप्त कांचन तपे हुए सोने जैसा हो जाता है। चिमना कुंचत मुखी सखी द्वितीय भिरावृता विग्रहे प्रौढ़िवादे चा प्रतिवाक्योपपत्ति सो। कभी विग्रह के समय, विग्रह मतलब झगड़ा, तो झगड़े के समय नव नमोन्मेष शालिनी प्रत्युत्पन्न मति रूप प्रतिभा प्रदान करके आग्रह पूर्वक राधा का भाव उदित कराती हैं। तो कृष्ण का जो भी उत्तर होता है तो उसके उत्तर में राधा रानी को आग्रह पूर्वक मान का भाव बढ़ाती हैं कि तुम भी उत्तर दो, तुम ऐसा उत्तर दो, तो कृष्ण को जो है राधा रानी को जो है ये और सिखाती हैं, मान सिखाती हैं। और कभी कभी भगवती पूर्णमासी से मिलकर के पहले तो स्वयं कृष्ण से मिलन कराती हैं, और मिलन के समय आने पर तटस्थ हो जाती हैं। तो पूर्णमासी देवी हैं, वृद्धा देवी हैं, उनसे मिलकर के कृष्ण से मिलन कराती हैं, और जब मिलन का समय आता है तो तटस्थ हो जाती हैं, यानी दूर हो जाती हैं कि राधा कृष्ण का मिलन होना चाहिए। प्रतिभाम उपलब्धा भीर धत्ते विग्रह माग्रहात आयाति संधि समये तरस्ते वैस्थिता स्वयं भगवत्यादि भीर द्वारेर युक्ताम संधिम करोत्यसौ। ललिता जी के, ललिता देवी पुष्पों के अलंकार छत्र सैया और एकांत में परस्पर वार्तालाप करने हेतु बैठने योग्य कक्ष का निर्माण करने में कुशल हैं। एक विशेष कक्ष है, वन में ही जो है कमरा जैसा तैयार कर देती हैं ये बिल्कुल एकांत, तो वो जो है बहुत कुशल हैं कि वन में भी जो है लताओं की दीवारें बना देती हैं और ये कमरा जैसा बना देती हैं, फूलों के ही जो है आभूषण बना देती हैं, और फूलों का ही छत्र और शैया फूलों की और बैठने का आसन भी फूलों का और कमरा भी पूरा फूलों का बना देती हैं, तो इनमें जो है ये बहुत कुशल हैं। और इंद्रजाल में भी बहुत कुशल हैं, यानी जादूगरी में भी कुशल हैं, और पहेलिका बनाने में भी, पहेली भी बनाती हैं कि राधा रानी समझ नहीं पाए वो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण समझ ना पाए वो क्या बोल रहे हैं, तो पहेली में जो है उनको फंसा देती हैं। मंडनम छत्रम शयनोत्थान वेश्मनाम निर्मिता इंद्रजाले च प्रहेल्यां चाति कोविदां। निर्मिता देवी तांबूल सेवा में अधिकार प्राप्त कराने वाले दासियों की अध्यक्ष हैं, तांबूल की सेवा और मदनों मादनी वाटिका में नियुक्त किन्नर किशोरियों की भी अध्यक्षता है अध्यक्षा है। और पुष्प और तांबूल की लताओं और सुपारी के वृक्षों की रक्षा करने वाली दासियों की भी अध्यक्षा है। तांबूले मदनोन्मादने वाट्याम या किन्नर किशोरी का प्रसून वल्ले तांबूल वल्ले पूगे द्रुमे सुचा सख्यश्च वन देव्यश्च वरावान्योपे जीविनां या कन्यकाश्यो सर्वासु तासेवाध्यक्षतां गता। रत्न रेखा आदि आठ प्रिय सखियों के विषय में जो वर्णन किया गया है वे सदा सब प्रकार से ललिता देवी के अनुकूल आचरण करने वाली हैं। ये वर सखियां हैं, आठ सखियां जो है वर कहलाती हैं यानी श्रेष्ठ। तो इनमें से जो है ये जो वर सखियां हैं या प्रिय सखियां हैं तो ये सब ललिता देवी के अनुकूल आचरण करती हैं। ललिता देवी ही इनको दिशा निर्देश करती हैं, डायरेक्शन देती हैं। रत्नलेखा दयोष्टौया प्रिय सख्यो नु कीर्तिता सर्वत्र ललिता देव्या गेया प्रत्यंतरा सदा। आठ सखियों जो ललिता देवी की अनुगत्य में सेवा करती हैं उनमें से दो सखियां बहुत विख्यात हैं जो ललिता देवी के अनुसार पूरा पूरा जो है मतलब कार्य करती हैं। वो कौन है? रत्न प्रभा और रति कला। और अपने गुण सौंदर्य निपुणता माधुर्य में भी ललिता जैसी है। रत्न प्रभा रति कले तत्राप्यष्टा सुविस्तृते गुण सौंदर्य वैदग्धि माधुरी भी रूपे गीयते। श्री कृष्ण को एक आभूषण बहुत प्रिय है, श्री कृष्ण को एक आभूषण बहुत प्रिय है और ये आभूषण उनके मस्तक का है। ये सुवर्ण केतकी पुष्प की कली और पत्ते और रंग बिरंगे गैरिक आदि धातुओं से बनाया जाता है। सप्त शिखा इसकी विशेषता है, सात शिखाएं होती हैं इस आभूषण में। तो ये जो है कृष्ण के मुकुट का भूषण है, कृष्ण को बहुत प्रिय है ये भूषण। फूलों के जितने आभूषण बनाए जाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है और पुष्पपार नाम से प्रसिद्ध है। ये सर्वश्रेष्ठ रत्नों से भी अधिक प्रिय है, रत्नों के भी बने आभूषण से भी ज्यादा ये प्रिय है। कृष्ण को ये आभूषण सबसे ज्यादा प्रिय है। इसकी रचना ललिता सखी ने श्री राधा से अच्छी प्रकार सीखी है, राधा रानी से सीखी है कि ये आभूषण कैसे बनाए जाए। ललिता देवी श्रीमती राधा के लिए भी पांच रंग के फूल और कलियों द्वारा पांच चूड़े वाला किरीट बनाती है, मुकुट, राधा रानी का मुकुट। ये कैसे बनाते हैं? पांच रंग के फूलों के द्वारा, उनकी कलियों के द्वारा पांच चूड़ा हो जिसमें, ऐसा मुकुट जो है राधा रानी के लिए बनाती हैं ललिता देवी। कृत सप्त शिखम भे मैं केतकी को रक्षदे चित्र कैर धातु चित्र चित्रहारी हरे हृदम किरीटम पुष्प पाराख्यम रत्न पारादि प्रियम रत्न पारादपि प्रियम गंधर्वातः कृतिम यस्य ललिता समय शिक्षत तत्तु पंच शिखम पुष्प पंचवर्णैर्विनिर्मितम कोरकैरपि गांधर्वा भूषणम कुटम भवे। 144 227 ललिता देवी कुछ दूतियों को बहुत पसंद करती हैं तो वो जो है माधव के परिवार में विशेष विश्वास पात्र मानी जाती हैं। अगर ललिता देवी कुछ दूतियों को जो है अगर पसंद करते हैं तो माधव के परिवार में फिर वो विश्वास पात्र बन जाती हैं। तो ये दूतियाँ के नाम हैं जो ललिता देवी को बहुत प्रिय हैं। एक है शिवदा, दूसरी सौम्य दर्शना, तीसरी सुप्रसादा, चौथी सदा शांता, पांचवी शांतिदा और छठवीं कांतिदा, ये मिलन कराने वाली द्वितियां हैं। ललिता जी की अध्यक्षता में ये राधा का कृष्ण से मिलन कराने वाली द्वितियां हैं। ये चतुरता पूर्वक संधि कराने में बहुत कुशल हैं। जब झगड़ा हो जाता है तो ये द्वितियां जो है चतुरता पूर्वक राधा कृष्ण में मिलन कराने में बहुत निपुण है। ललिता देवी की प्राण होने के कारण माधव के परिवार में इनकी गिनती विशेष विश्वास पात्र के रूप में की जाती है। ललिता देवी ने अगर मोहर लगा दी है तो माधव के परिवार में विशेष विश्वास पात्र द्वितियां है ना। सर्वथा ललिता देवी जीविता वस्तु तत्म माधव से परिवार मन्यते। और जब राधा रानी कलह अंतरिता दशा में रहती है, कलह अंतरिता का मतलब है कि कृष्ण जब आए तो उनको देख करके भी बुरा भला कहती हैं, और जब कृष्ण चले जाते हैं तो दुखी हो जाती हैं। जब कृष्ण आए मिलने के लिए राधा रानी से तो कृष्ण को की निंदा करती हैं कि जाओ, और कृष्ण जब चले जाते हैं तो फिर दुखी होती हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कलहांतरिता। तो जब राधा रानी कलहांतरिता दशा में रहती हैं, कलह के बाद मतलब कृष्ण को मतलब भगा दिया, अब जो है बहुत शोक कर रहे हैं कि मैंने कृष्ण को भगा दिया, तो ऐसे में इनकी संधि द्वितियां ललिता की इशारे से संधि द्वितियां श्री कृष्ण के गण में अब स्थान करने लगती हैं कि कृष्ण को बुलाएं, कृष्ण को समझाएं, हैं। तो ये सब कार्य जो है मतलब ललिता के संकेत से होते हैं, ये सब कार्य ललिता के संकेत से होते हैं। गांधर्वायाम प्रपन्नायाम कलहांतरिताम दशाम ललितेंगितमासाद्य हरिर्गणतया स्थिताम। श्री ललिता सखी की अनुगत्य में सेवा करने वाली आठ प्रमुख सखियों के नाम हैं। सुन रहे सब लोग, ये आठ सखियां तो है ही हैं राधा कृष्ण के बीच में जो सेवा करती हैं। एक प्रत्येक सखी की और अनुगत आठ सखियां हैं। तो ललिता देवी के अनुगत रहने वाली आठ सखियां हैं। पहला है रत्न प्रभा, दूसरा रतिकला, तीसरा सुभद्रा, चौथा रतिका, पांचवा सुमुखी, छठवां धनिष्ठा, सातवां कलहंसी और आठवां कलापिनी। ये आठ सखियां ललिता के अनुगत। रत्न प्रभा रतिकला सुभद्रा रतिका तथा सुमुखी चा धनिष्ठा चा कलहंसी कलापिनी। ऐसे प्रत्येक सखी के आठ सखियों में से प्रत्येक सखी के आठ आठ और सखियां हैं। 201 है। हंसिनी का नाम है तुंडी केरी, राधा रानी की हंसी है? हंस है? हंस की जो स्त्री हंसी है, राधा रानी की हंसी का नाम है तुंडी केरी। ये हंसनी श्री राधा के राधा कुंड में विचरण करती है, राधा कुंड में विचरण करती है, और उनकी मयूरी का नाम है तुंडिका। राधा रानी की मयूरी भी है। कृष्ण के पास हंस होता है, राधा रानी के पास हंसी होती है। कृष्ण के पास मोर होता है, राधा रानी के पास मयूरी होती है। तो मयूरी का नाम है तुंडिका, और सारिकाओं के नाम है सारिकाएं, तोता और मैना है ना। तो कृष्ण का तोता होता है, तो राधा रानी की मैना सारिका। सारिकाओं के नाम है सूक्ष्मधि और शोभा। निजकुंड चरी तुंडी केरी नाम है मरालिका, मयूरी तुंडिका नामना सारिके सूक्ष्मधि शोभे। अपने नाथ श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला का अवलंबन करके ललिता देवी जिन मनोहर गीतों की रचना करती हैं, ये दोनों सारिकाएं उन्हें सुमधुर स्वर से विचित्र वाक्यों में पाठ करते हुए सखियों के मन में अद्भुत रस का संचार करती हैं। ये जो सारिकाएं हैं है? इनके नाम याद है किसी को? मैंने बताया राधा रानी की सारिकाएं हैं है? क्या नाम? सूक्ष्म थी और सुबह नोट कर लिया है। तो ये जो सारिकाएं हैं ललिता सखी जो है जो मनोहर गीतों की रचना करती हैं राधा कृष्ण की लीलाओं की ललिता सखी रचना करती हैं, तो उनको जो है ये दोनों सारिकाएं सुमधुर स्वर से और विचित्र वाक्यों में पाठ करते हुए सखियों के मन में अद्भुत रस का संचार करती हैं। ये सारिकाएं जो है ये कार्य करती हैं। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने इसमें से सुनाई हैं राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से। एक घटना और भी बताई गई है कि जब राधा ने प्रथम बार कृष्ण का दर्शन किया था कितने बार? सबसे पहली बार जब राधा ने कृष्ण का दर्शन किया तो दिव्य आनंद में उनका शरीर अकड़ गया शरीर बिल्कुल। तो ललिता ने उनके कान में जब कृष्ण नाम फूंका, मंत्र फूंका ना, कृष्ण नाम का मंत्र फूंका, तो राधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। तो कृष्ण का जो रूप है उसने जहर का काम किया, राधा रानी का शरीर क्या हो गया? बिल्कुल अकड़ गया। तो कृष्ण नाम जो है ललिता ने जब उनके कान में डाला तो उसने अमृत का काम किया और राधा रानी की चेतना वापस आ गई। कुछ घटनाएं हैं ललिता देवी के संबंध में, ये जो है अंतलीला अध्याय 14 और प्रयाण संख्या 53 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो है कुछ बातें लिखी हैं। तो राधा रानी कृष्ण की विरह में ललिता से बोल रही हैं, जैसे कि बताया गया कि ललिता ही राधा रानी के प्राणों की रक्षा करती हैं, तो अपना जो कष्ट है राधा रानी किसको बताते हैं? ललिता को बताते हैं। कहते हैं, हे ललिता, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरे हृदय किस तरह चल रहा है। मेरा हृदय क्या है? चिंता का विशाल सागर है। फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों में नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी अवस्था पर विचार करके मुझे परामर्श दो कि मुझे कैसे शांति मिलेगी। कृष्ण के विरह की पीड़ा में बहुत दुखी होकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे ललिता, कृपा करके मेरी बात सुनो। मैं कृष्ण के विरह के ज्वर को सह नहीं पा रही हूँ, ना ही तुमसे वर्णन कर सकती हूँ। ये मिट्टी के पात्र में सोने के पिघलने जैसा है। क्या राधा रानी का शरीर मिट्टी का बर्तन जैसा है और कृष्ण का विरह सोना पिघले, मिट्टी के बर्तन में सोना पिघले, तो क्या होगा? फट जाएगा मिट्टी का बर्तन, है ना? तो मेरा शरीर तो फट रहा है, मेरा शरीर मिट्टी जैसा है और कृष्ण का विरह सोने के पिघलने जैसा है। ये ज्वर विष से भी अधिक कष्ट दे रहा है। कृष्ण का जो विरह है ये ज्वर है, विष से भी अधिक कष्ट दे रहा है और वज्र से भी अधिक कठोर है। मैं उसी प्रकार कष्ट पा रही हूँ जैसे हैजे के कारण व्यक्ति मरता है। मुझे इतनी पीड़ा देने के लिए ज्वर अवश्य ही बहुत प्रबल है। उत्तापी पुटपात कोपी गरल ग्रामादपि क्षोभणो दम्भोलेरपि दुस्सह कटुरलम हृन्मग्न शूल्यादपि तीव्र प्रौढ विसूचिकान चैतो पुच्चैर ममायं बली मर्मान्यद्य भिनत्ति गोकुलपतेर विश्लेष जन्मा ज्वरः। कृष्ण कहाँ पर हैं? राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही हैं, तो कृष्ण कहाँ पर हैं? बोलो, कौन बताएगा? कृष्ण कहाँ पर हैं? कौन बताएगा? राधा रानी कृष्ण की बहरे का अनुभव कर रही हैं। कृष्ण कहाँ पर हैं? हैं? मथुरा में। कृष्ण मथुरा में है। तो ललिता जी ने कृष्ण को पत्र लिखा। उद्धव जी आए ना, उद्धव जी आए संदेश लेकर के, कृष्ण का संदेश लेकर के अब जा रहे हैं मथुरा। तो ललिता जी ने कृष्ण को पत्र लिखा। अब सुनिए पत्र में कृष्ण कितनी कठोर बातें लिखी हैं ललिता ने, राधा रानी के पक्ष में और कृष्ण के दोष बताने के लिए कि कृष्ण का कितना दोष है। श्रीमती राधा रानी की ओर से कृष्ण को ये पत्र लिखा। हे प्रिय कृष्ण, आपकी बहन ने श्रीमती राधा के मन को अत्यधिक चंचल बना दिया और अचेत होकर वो भूमि पर गिर पड़ी है। दोष आपका है कि राधा रानी आपके विरह ने राधा रानी के चित्त को बहुत चंचल बना दिया है और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी है। हे कंस के शत्रु, अब तो आप उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? ऊंची ऊंची राजनीति, बहुत बातें करते हैं, नहीं करते कुछ नहीं है। बातें बातें जो है बहुत बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उच्च कोटि के राजनीति के, नहीं करते कुछ नहीं है। अब तो आप उच्च कोटि के राजनीति के बन गए, क्योंकि अब उसमें आ भी गए ना शासन में, अब आप जो है उसमें आ भी गए, पॉलिटिक्स में आ गए। कंस के शत्रु हैं, कंस को मार दिया है, तो अब आप राजनीति में आप उसी विभाग में आप आ गए हैं, डिपार्टमेंट। इसलिए आप कदाचित हर एक को आश्वासन दे सकते हैं। अब आपका जो है एक ही काम है, क्या? सबको आश्वासन देना है। हाँ हाँ ये भी, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। अब आप जो है आश्वासन देने बहुत निपुण हो गए हैं, इसलिए कृपया श्रीमती राधा रानी की दयनीय दशा पर विचार करें, या फिर आप शीघ्र उसकी मृत्यु के विषय में सुनेंगे। या तो विचार करो कि बिना विचारे आप आश्वासन देने में आप बहुत निपुण हैं। विचार तो कुछ नहीं करते, हाँ 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 लेकिन आप विचार करो राधा रानी की कैसी दयनीय स्थिति है, अथवा जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। क्या सूचना मिलेगी? राधा रानी की मृत्यु की सूचना मिलेगी, जल्दी मिलेगी। हो सकता है तब आप शोक करेंगे, इसलिए पहले से विचार कर लो। अभी तो आपको जो है विचार नहीं करते हो, हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आप बोलते रहे। विचार कर लो, हो सकता है फिर बाद में शोक हो। हाँ तो ऐसा काम क्यों करते हो कि बाद में फिर जो है शोक करना पड़े। नरेंद्र जी ने जो है कठोर शब्द लिखे हैं कृष्ण को। निरुंधे ध्यान्याभ्यं हरति गुरु चिंता परिभवम विलुम्पत्युन्मादं स्थगयति बलान् बाष्पलहरीं इदानीं कंसारे कुवलय दृशः केवलमिदं विदत्ते साचिव्यं तत तव विरहमूर्च्छा सहचरी। फिर दूसरा दूसरी बात लिखती पत्र में कि कृष्ण मथुरा में रह गए, आना था वापस कंस को मार करके, कंस को मार करके वापस नहीं आए, वहीं रह गए। तो निंदा करती हैं ललिता जी, कृष्ण की निंदा करती हैं कि मथुरा में रह गए। रास नृत्य के मंडल में नृत्य मात्र से तुमने श्रीमती राधा रानी के प्रेम को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, अब तो मेरी सखी से इतने उदासीन क्यों हो गए? तुमने ही उसको आकर्षित किया, अब तुम जो है क्या हो गए हो? उदासीन हो गए हो। ये सब जो है दोष तुम्हारे हैं, तुम्हारी लीलाओं को सोच सोच कर वो प्रायः मूर्छित पड़ी है। उसके नथुनों के पास रुई का फुहा रखकर मैं पता लगाऊंगी कि वो जीवित है या नहीं है। उसकी ये हालत है राधा की, रुई का फुहा लगा करके पता चलेगा कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही, तो मैं पता लगाऊंगी। और यदि वो जीवित है तो मैं उसकी निंदा करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो जीवित है तो तुम्हें चिंता नहीं होती है, हैं? अगर वो मर जाए तो तुम्हें कुछ चिंता होगी? तो ये भी जो है मतलब कुछ तो मैं सोच चाहती हूँ कि तुम्हें चिंता हो। हे रास क्रीड़ा रस के मम सख्यम नव नवा पुरा बद्धा ये न प्रणय लहरी हंत गहना सचेत मुक्ता अपेक्षस तुम असी दिव्य माम तूल सकलम यदि तस्या नासान हृदय मिदम अद्यापि चलति। तो कभी कभी ये बातें जो है बहुत कठिन लगती हैं समझने के लिए, लेकिन प्रेम में जो है कभी कभी ऐसी कठोर बातें भी है निकलती हैं ना। अब मैं एक लीला सुनाऊंगा, बड़ी सुंदर लीला है गर्ग संहिता से, जिसमें ललिता जी की भी चर्चा आती है और राधा रानी की भी चर्चा आती है। क्योंकि राधा रानी का आविर्भाव बहुत निकट आ रहा है, इसलिए हमें राधा रानी की कथा भी सुनना चाहिए। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलाशु को, मिथिला के राजा बहुलाशु को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने ताली मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजा से कहा कि मैंने काली मर्दन रूपी कृष्ण का पवित्र चरित्र कहा, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो राजा बहुलाश बोले, हे देवर्षि, जैसे देवता अमृत पीकर, क्या जैसे देवता अमृत पीकर और भ्रमर कमल का रस पीकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता है। तो मैं कैसे तृप्त हो सकता हूं कि अब मैं ना सुनना चाहूं? श्री कृष्णस्य कथां श्रुत्वा भक्तिस्तृप्तिं न याति यथा मना सुधां पीत्वा यथालि पद्मकर्णिकां। जब श्री कृष्ण शिशु के रूप में रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका शिशु रूप देखकर राधा मन ही मन दुखी हुई, तब आकाशवाणी ने कहा था कि शोक ना करो, वृंदावन में श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया, वो मनोरथ किस प्रकार पूरा हुआ? उस मनोहर वृंदावन में श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? उस वृंदावन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की? इत्थं देवगिरा प्रोक्तो मनोरथे महारणमः कथं बभूव भगवान् वृंदारण्ये मनोहरे कथं स्थि राधया सार्धं रास क्रीडां मनोहरां चकार वृंदकारण्ये परिपूर्णतमः स्वयं। तो नारद जी ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हरि बोल। नारद जी ने क्या कहा? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो जो श्रोता होते हैं उनके प्रश्न से वक्ता को उत्साह मिलता है, हैं? जब श्रोता सोते हैं तो वक्ता को फिर निराशा होती है। तो आप लोग श्रोता बनिए, श्रोता मत बनिए। कुछ लोग श्रोता हैं और कुछ लोग श्रोता हैं। कितने लोग श्रोता हैं? बहुत कम लोग श्रोता। बाकी लोग क्या हैं? श्रोता है? हाँ? तो श्रोता से श्रोता कितने लोग बनना चाहते हैं? आधा हाथ उठाते, मतलब आधा श्रोता आधा श्रोता। तो सुनिए ध्यान से, जितना सुनेंगे उतना ही लाभ है, फिर हमेशा नहीं मिलेगी कथा। नारद जी ने कहा, हे राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उस मंगलमय चरित्र का, उस मनोहर लीला का जो देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। समझ रहे? ये जो लीला है ये किसको भी पता नहीं है, किसको ज्ञात नहीं है? देवताओं को भी ज्ञात नहीं, मनुष्यों की तो बात दूर। ये नहीं मिलेगी समाचार पत्रों में, रेडियो में और टीवी में, ये कथा नहीं मिलेगी। मैं वर्णन करता हूँ। साधु पृष्ठम त्वया राजन् भगवच्चरितं शुभम गुप्तम वदामि देवस्य लीलाख्यानम मनोहरम। एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रधान सखियां ललिता और विशाखा विषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। एकदा मुख्य सख्यो द्वे विशाखा ललिते शुभे वृषभानोर्गृहं प्राप्य ताम राधाम जगमतुरः। सखियां बोली, हे राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन गोप बालों के साथ ब्रजभानुपुर में आते हैं। ये समाचार बहुत अद्भुत समाचार है। अरे वो तो रोज आते हैं यहीं पर, तुमको पता नहीं है जिनके तुम हमेशा गुणगान करती हो, ये रोज आते हैं। यम चिंत्य से राधे तुम यद गुणम बदसी स्वतः सोप नित्यम समायाति ब्रजभानुपुर हेर भगे। हे राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब ये गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, जो बड़े सुंदर हैं। प्रेक्षण यस्तुया राधे दर्शनयोति सुंदरः पश्चिमायाम निशीथिन्याम गोचारण विनिर्गतः। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी। तो दर्शन करने का अवसर तो अभी बहुत दूर है, रात्रि के अंत में होगा उनका दर्शन, तो पहले तो मुझे क्या दिखाओ, उनका चित्र बना करके दिखाओ। राधा रानी किससे कह रही हैं? ललिता विशाखा से कह रही हैं, इसमें संशय नहीं है। लिखित्वा तस्य चित्रम हि दर्शयासु मनोहरम तर्हि तत्प्रेक्षणम पश्चात करिष्यामि न संशयः। नारद जी कहते हैं तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया। ललिता सखी विशाखा सखी दोनों मिलकर के दोनों ने जो है एक ही कागज में कृष्ण का चित्र बनाया, दोनों मिलकर के बना रहे हैं। और वो चित्र तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। अथ सख्यो विलिखिताम चित्रम नंद शिशो शुभम नव यौवन माधुर्यम राधाय ददतु स्वरम। वो चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी, हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी, हाथ में रखे हुए चित्र को देखती हुई आनंद मग्न होकर सो गई, चित्र को देखते देखते ही सो गई। भवन में सोते हुए श्री राधा ने स्वप्न में देखा। अब स्वप्न क्या देखा? यमुना के किनारे भांडीर वन के एक प्रदेश में नील मेघ किसी कांति वाले पीतपटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। ददर्श कृष्णम भवने शयाना घन प्रभम पीतपटम दधानम भांडीर देशे यमुनाम समेत नृत्यन्ते महाराज वृषभानुपुत्री। हे राजन, उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और सैया से उठकर श्री कृष्ण के वियोग में बेहमल हो उन्हीं के रूप का चिंतन करते हुए तीनों लोगों को तिनका समझने लगे। अब नींद टूटना ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि अब कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, और कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है तो तीनों लोग क्या है? तिनका के समान है। तिनका है, तीनों लोग क्या है? तिनके के समान है। तदैव राधा सेना समुत्थिता परस्य कृष्णस्य वियोग बेहबला संचिन्तयन्ती कमनीय रूपिणम मेने त्रिलोकीं तृणवन विदेहरा। इतने में ही श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर ब्रजभानु नगर की साकरी गली में आ गए। देखो कितना सेटिंग है, अभी निशांत काल हुआ, 3:22 में निशांत काल नहीं रात्रि समाप्त होती है। तो राधा रानी की नींद भी टूट गई, अब वो जो है बहुत कृष्ण के वियोग में आतुर हो गई। और उसी समय कृष्ण का आगमन हुआ, कहाँ पर? सांकरी गली। सांकरी गली देखी बरसाना में, तो सांकरी गली में उनका जो है आगमन हुआ। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही श्री राधा मूर्छित हो गई। तरिहा ब्रजंतम स्वपनान स्वपनान ब्रजेश्वरम संकोच वीत्याम ब्रजभानुपत्तने गवाक्षमेत्याशु सखी प्रदर्शितम दृष्ट्वा तु मूर्छाम समवाप सुंदरी। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव भी सुंदर रूप देख करके मनी मन उनके साथ विहार की कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। कृष्ण की भी दृष्टि पड़ गई, कहाँ? खिड़की में, यहाँ राधा रानी उनको देख रही थी। कृष्णोपि दृष्ट्वा ब्रजभानुनन्दिनी स्वरूप कौसल्ययुतां गुणाश्रयां कुर्वन् मनोरन्तुमतीव माधवो लीला तनुसा प्रयो सुमन्दिरम्। ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से बेहबल और अतिशय संतप्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। अब ललिता क्या बोल रही है राधा रानी से? ललिता ने कहा, हे राधे, तुम क्यों इतनी बेहबल मूर्छित और अत्यंत व्यथित हो। हे सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। स्नेह दृढ़ करो, अब उससे काम नहीं चलेगा, लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, स्नेह दृढ़ करो। कथम तम बेहला राधे मूर्छिता व्यथाम गिछसी हरिम शुभ्रो तस्मिन स्नेह दृढ़ करो। इस समय वे तीनों लोगों के संपूर्ण सुख पर अधिकार करके बैठे हैं, उनके बिना तुम्हें तीनों लोगों में कहीं सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरा अधिकार उन्होंने कर लिया है, तीनों लोगों के सुखों पर पूरा अधिकार करके बैठे हैं। हे देवी, वे ही तुम्हारी दुख अग्नि की ज्वाला बुझा सकते हैं, उनकी उपेक्षा अगर उपेक्षा करोगी तो पैरों से ठुकराई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। कुम्हार के आवे की आग कैसी होती है? राख दिखाई पड़ता है, आग नहीं दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ता है? राग दिखाई पड़ती है। और पैर मारो अगर तो बहुत भयानक, बहुत भयानक परिणाम अगर पैर मारा। उसी प्रकार से कृष्ण की उपेक्षा करोगी, अगर तुम कृष्ण की उपेक्षा करोगी कि छोड़ो कृष्ण की चर्चा, छोड़ो कृष्ण की चर्चा नहीं करना है और दूसरी चर्चा करो, तो ये इतना कष्ट मिलेगा तुमको जैसे क्या कुम्हार की आग में पैर अगर मारो तो बहुत कष्ट मिलेगा, इसी प्रकार से कष्ट मिलेगा तुम्हें। लोकस्यापि सुखम सर्वम अधिकृत्यार्थी सांप्रतम दुखाग्नि हृदय प्रदाति कुंभकार अग्निवच्छोभे। ये बात किसने कही? ललिता देवी ने कही। किससे कही? राधा रानी से कही। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ललिता की ये ललित बात सुनकर श्री राधा ने आंखें खोली और अपने प्रिय सखी से गदगद वाणी में बोली। ललितायाश्च ललितं वचः श्रुत्वा ब्रजेश्वरी नेत्रे उन्मील्य ललितां प्राह गद्गदया गिरा। राधा ने कहा, हे सखी, यदि मुझे श्याम सुंदर के चरण कमल नहीं प्राप्त हुए तो मैं अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी। निश्चित क्या, अगर श्याम सुंदर के चरण कमल नहीं प्राप्त हुए तो क्या होगा? मैं अपना शरीर धारण नहीं करूंगी, ये मेरा निश्चय है। ब्रजालंकार चरणों न प्राप्त हो यदि मैं किल कदाचिन विग्रहम तरी नहीं स्वम धारे हम यहम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री राधा की ये बात सुनकर ललिता भयभीत होकर के यमुना के तट पर श्री कृष्ण के पास गई। अब ललिता बहुत भयभीत हो गई, क्यों? राधा रानी शरीर छोड़ देंगी अपना, तो कहाँ गई? यमुना के तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत में कदम्ब के नीचे अकेले बैठे थे। अब कृष्ण अकेले भी होने चाहिए और कृष्ण का अकेला मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ललिता देवी ने बहुत अवसर ढूंढा अकेले कृष्ण को मिलने का। अकेले बैठे थे, वह ललिता ने श्री हरि से कहा, माधवी जाल संयुक्त मदन धुनि संकुले कदम मूले राशि प्राय च काकिनम हरिम। ललिता बोली, हे श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वो स्तंभन भाव को प्राप्त हो गई है। स्तंभित हो गई मतलब अकड़ गई है, राधा क्या हो गई तब से? अकड़ गई है, काठ की पुतली की भांति। लकड़ी की पुतली कैसी होती है? हिलती डुलती थोड़ी है, काठ की पुतली की भांति, किसी से कुछ बोलती नहीं है और आभूषण उसे अग्नि की ज्वाला की भांति लगते हैं। आभूषण होते हैं, चमकते हैं अग्नि की ज्वाला की तरह, तो उसे आभूषण कैसे लगते हैं? अग्नि की ज्वाला की तरह लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं आभूषण। और सुंदर वस्त्र भी भाड़ की तपी बालू के समान जान पड़ते हैं। भाड़ की तपी बालू, शायद दिल्ली में आप लोग उन्हें देखा नहीं, भाड़ की तपी बालू मतलब बालू को ही बहुत गर्म कर देते हैं जिसमें चना भुना जाता है, तो बालू ही जो बहुत गर्म बालू हो, तो वस्त्र भी राधा को कैसे लगते हैं? तपी हुई बालू की तरह लगते हैं वस्त्र। और हर प्रकार की सुगंध है उसे कड़वी लगती है और दासियों से भरा भवन भी निर्जन बन जैसे लगता है राधा को। कितनी दासियां हैं राधा के भवन में, लेकिन वो भवन भी निर्जन वन जैसा लगता है, क्यों? तुम्हारे बिना। अलंकारस्त्वर चिरेवे वस्त्रम भर्जरजो यथा सुगंधि कटवन्यस्या मंदिरम निर्जनम वनम। हे कृष्ण, तुम ये जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण जैसा लगता है। फूल कैसा लगता है? बाण जैसा लगता है। और चंद्रबिंब, चंद्रमा का बिंब विष का कंद जैसा लगता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसके दुख को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो, भूतल पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें विदित ना हो। तो तुम जानते हो राधा की दशा कैसी है, क्योंकि तुम क्या हो? सबके साक्षी हो। तुम इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो। तो राधा रानी के ऊपर आप कृपा करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा गुण भी है। ते साक्षिणा किम विदितम न भूतले सजस्यलम पांसि हरश्चतो जगन् यदा समानो से जने सुसर्वत तथापि भक्तान भजसे परेश्वर। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ललिता की ये ललित वाणी सुनकर ब्रज के देवता श्री कृष्ण मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। इति श्रुत्वा हरि साक्षान् ललितम ललिता वचः वाच भगवान देवो मेघ गंभीर या गिरा। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ पुरुषोत्तम की ओर प्रवाहित नहीं होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल में प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, उसी रूप में पूरा होगा। संत महात्मा प्रेम को निश्चय ही निर्गुण मानते हैं। कृष्ण प्रेम ही क्या है? निर्गुण। यथा ही भांडीर बने मनोरथ हो बभूतस्या ही तथा भविष्यति अहेतुकम प्रेम च संधिराश्रितम तचापि संता केल निर्गुणम विदुः। जो मुझ केशों में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी सफेदी के समान हम दोनों को अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तथा वही मेरे गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। ये राधिकाया मयि केशवे मनाग भेदम न पश्यन्ति हि दुग्ध शौक्लव तदेव मे ब्रह्म पदम प्रयान्ति तदहेतुक स्फूर्जत भक्ति लक्षणा। हे देवी, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव में और राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं तब तक काल सूत्र नामक नरक में दुख भोगते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण की सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हंसी की छटा छा रही थी। राधा रानी से बोल रहे हैं तो हंसी आ रही है, राधा ललिता को सखी हंसी आ रही है। इति श्रुत्वा वचः कृष्णं नत्वा तं ललिता सखी राधां समेत रहसि प्राह प्रहसिताननः। ललिता ने कहा, हे सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। ये समाचार ललिता ने किसको दिया? राधा रानी को दिया। कि एक तरफा नहीं है तुम्हारा प्रेम, एक तरफा नहीं है, वहां से भी उसी प्रकार का प्रेम है, उधर से भी है। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित और एक है, लोग अज्ञानवश उसे दो मानते हैं, तथापि हे सती साध्वी, हे देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, ललिता सखी की ये बात सुनकर श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ चंद्राना सखी से पूछा। राधा बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई पूजा बतलाओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो, महान पुण्य जनक हो, मनोवांछित वस्तु देने वाली, ऐसी पूजा बताओ। राधा रानी ने पूछा किससे? चंद्राना से पूछा, जो धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ। हे देवी, तुम गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनती हो, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजा बताओ। त्वया भद्र धर्म शास्त्रम गर्गाचार्य मुखाश्रुतम तस्मान व्रतम भोजनम भा ब्रूहे मह्यम महामते। नारद जी कहते हैं हे राजन, राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार करके उत्तर दिया। एक क्षण मतलब कितना? 4 मिनट। किसने विचार किया एक क्षण तक? 4 मिनट के लिए चंद्रानना ने विचार किया। फिर कहा, चंद्रानना बोले, हे राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वर प्रदम श्री कृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम तुलसी सेवनम मतम। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी कहती स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन स्तवन आरोपण सेचन और तुलसी दल से नित्य पूजन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ हजार युगों तक अपने उस पुण्य का उत्तम फल भोगते हैं। हरि बोल। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। हरि बोल। हे राधिके, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। सब प्रकार के फल, सब प्रकार के फूल और पत्ते चढ़ाओ और एक तुलसी का दल चढ़ाओ बराबर। एकमात्र जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वो जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। तुलसी प्रभु में पत्र यो न पूजे धरिम लिप्यते न सपापे न पद्म पत्रम में वाम भसा। गीता का आधा श्लोक है। 100 भार सोना 400 भार चांदी के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वो घर तीर्थ रूप होता है, वह यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्यजनक और मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। रोपण पालन सिंचन दर्शन स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को जला डालती है। हरि बोल। पुष्कर आदि तीर्थ क्या? पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्यासरितस्तथा वासुदेवादयो देवा वसन्ति तुलसी दले। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा चंदन लगाता है उसके शरीर को क्रियमाण पाप नहीं छूते। जहाँ जहाँ तुलसी बन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, वहाँ दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होता है। हे सखी, ब्रह्मा जी भी श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को कहने में समर्थ नहीं है। जैसे हरि का महात्म्य है तुलसी का महात्म्य भी अनंत। जो स्त्री या पुरुष चंदन युक्त तुलसी दल श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाता है उसे उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। अतः हे गोप नंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहेंगे। तुलसी सेवनम नित्यम कुरु तुम गोप कन्यके श्री कृष्णो वश्यताम याति ये नमः सर्वदेवहि। नारद जी कहते हैं राजन, इस प्रकार चंद्रानना की बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में कौन सा स्थान है? केतकी वन में। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया। हाथ कितना होता है? इतना होता है ना, 1.5 फुट समझ लो। 100 हाथ का मतलब 150 फुट का जो है मतलब विस्तार, उसका इस प्रकार से वृत्ताकार जो है उन्होंने मंदिर बनवाया तुलसी का, जिसकी दीवार सोने की। क्या समझे, तुलसी का मंदिर है, सोने की दीवार, 150 फुट के विस्तार में सोने की दीवार और किनारे किनारे पद्मनाग मणि जड़ी हुई, सुंदर मंदिर पन्ने हीरे मोतियों के परकोटे से अत्यंत शोभित था, परकोटा उसके भी ऊपर, उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित है, परिक्रमा की गली भी चिंतामणि से मंडित, बहुत ऊंचा होने के कारण बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था, चारों ओर ताने हुए सुनहले चंदोमों के कारण तुलसी मंदिर इंद्र भवन सा दीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पत्तों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। अभिजित मुहूर्त 11:22 से चलता है शुरू, 48 मिनट का, 12:10 तक सेवा प्रारंभ की। गर्ग जी को बुलाया और उनकी बताई विधि से राधा ने बड़ी भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। छह महीने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक 6 महीने व्रत आरंभ करके प्रति मास अलग अलग रसों से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से पहला महीना सिंचन किया, किसे? दूध से। दूसरा महीना मार्गशीर्ष ईख के रस से। तीसरा महीना पौष अंगूर के रस से। चौथा महीना माघ 12 मासी आम के रस से। कितने हो गए? 4। पांचवा महीना फाल्गुन अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से। और छठवा ना, छठवा है चैत्र मास पंचामृत, पंचामृत से सिंचन किया। पंचामृत का मतलब चीनी दूध दही और घी शहद, पंचामृत है ना, सिंचन किया। इस प्रकार व्रत पूरा करके श्री राधा ने गर्ग जी की बताई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन कलशो किया। 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त किया। हरि हो। 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों की दक्षिणा भी दी उनको। 2 लाख ब्राह्मणों को मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार, मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 करोड़ भार गर्गाचार्य जी को दिया। अरे 100-100 भार सोना और मोती परम भक्ति के साथ राधा ने एक एक ब्राह्मण को दिया। 100-100 भार सोना और 100-100 भार मोती एक एक ब्राह्मण को दिया। कितने ब्राह्मण है? 2 लाख ब्राह्मण है। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजी, अप्सराओं का नृत्य हुआ। देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय सोने के सिंहासन पर विराजमान तुलसी देवी प्रकट हुई। हरि बोल। उनके 4 भुजाएं हैं तुलसी देवी। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। कमल दल के समान विशाल नेत्र, 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति है। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में सोने के कुंडल झलमला रहे और पीत वस्त्र धारण किए हैं और केसों की बंधी हुई नागिन जैसी बेड़ी में बेजयंती माला धारण किए, गरुड़ से उतरकर, गरुड़ पर बैठकर के आई थी, गरुड़ से उतरी तुलसी देवी। और तुलसी देवी ने श्री राधा को अपने भुजाओं से अपने अंक में भर लिया और मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से वशीभूत होकर परम प्रसन्न हूँ। हे भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस व्रत का अनुष्ठान किया है शिक्षा देने के लिए, तुम तो उनकी अर्धांगिनी हो। यहाँ जो जो मनोरथ तुमने किया है वो सब तुम्हारे सफल होंगे, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हों, इसी प्रकार कीर्तनी परम सौभाग्य बना रहे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यूं कहती हुई तुलसी को प्रणाम करके राधा ने उनसे कहा, हे देवी, गोविंद के चरण कमलों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब हरि प्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। एवं वदंती तुलसी हरि प्रियाम नत्वाथ राधा ब्रजभानु नंदिनी प्रत्या है गोविंद पदारविंद और भक्तिर भवेन में विदिता है तुकी। हे राजन, तब से ब्रजभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधिका की इस विचित्र कथा को सुनता है। सुन रहे हैं? सुनो ध्यान से। क्या? इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधिका की इस विचित्र कथा को सुनता है वो मनी मन तीन वर्ग सुख अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। श्री राधिकाख्यान विचित्रम श्रृणो दियो भक्ति परा पृथिव्याम त्रैवर्ग भाव मनसा समेत राजन ततो याति नरा कृतार्थता। तो बहुत सुंदर कथा अभी आप लोगों ने सुनी है। इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। तो अब प्रश्न करने का भी समय नहीं है। ठीक है, श्रीमती ललिता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती राधा कथा महामहोत्सव की, जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोविंद पंच तत्व सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरि बोल। पकड़ कर ये पकड़ लें। परमात्मा प्रभु करके
हरे कृष्ण। तो हम सब फिर से बहुत आभार व्यक्त करेंगे श्री सीतारामन प्रभु जी का इस पावन दिवस पर यहाँ आने के लिए, उनके स्मरण करने के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाद की, तमिल गौर भक्त वृंद की, सीतारामन प्रभु जी की।